नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन 2020 में इन्होंने एक अध्ययन कराया जिसमें ये पता चला कि जो खबरें आप अपनी सेहत से जुड़ी पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो ठीक है और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर फेक हो सकती हैं। वो आपके लिए सही और सटीक नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन साबित हो सकती हैं। इसी अध्ययन में यह भी पता चला कि 6 साल में एक मिस इन्फॉर्मेशन, मेडिकल फील्ड से जुड़ी एक खबर को तकरीबन 4,50,000 बार शेयर किया गया, सोशल मीडिया पर इसे साझा किया गया। अब ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा तो है ही, साथ ही ये एक चिंताजनक विषय भी बन जाता है, क्योंकि भाई बात आपकी सेहत से जुड़ी है। अगर आप सेहत से जुड़ी चीजें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये आपके लिए मददगार हो सकता है क्योंकि बहुत सी सटीक जानकारी आपको यहां मिलती है, लेकिन भ्रामक और गलत जानकारी भी यहां भरी पड़ी है। ऐसे में आप ये कैसे समझें कि कौन सी जानकारी आपके लिए सही है, किस तरह आप मिथ से बचकर रह सकते हैं, इसी पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं सर्जिकल ऑनको दिल्ली के एम्स में। नमस्कार सर।
धन्यवाद।
सर, अमेरिकन न्यूज वेबसाइट NBC के अनुसार 80% लोग इंटरनेट पर जाते हैं और अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी सर्च करते हैं। इन्होंने 2019 में सर्वे कराया था जिसमें यह पता चला कि उस दौरान कोविड से पहले सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही थी वो कैंसर से जुड़ी हुई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं और किस तरह की गलत और भ्रामक जानकारी आपने भी इस दौरान देखी?
ये बात सही है कि आज के जो सूचना तकनीक का जो टाइम है और उसमें कई सारे लोग, ज़्यादातर लोग जिनके हाथों में मोबाइल है, वो इंटरनेट से कई सारी जानकारियां ले रहे होते हैं और उनमें उनकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारियां भी होती हैं। समस्या ये होती है कि ये जानकारियां कितनी सटीक और ऑथेंटिक हैं। जब तक ये पक्का नहीं हो तो जो आप सूचना इंटरनेट से ले रहे होते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और यही हुआ कोविड के टाइम में और उसके बाद कई सारे जो उसके कैंसर से रिलेटेड जो लोगों ने जोड़ना शुरू किया उसके बारे में कई सारे भ्रम और मिथ्स फैलने लगे। रादर ये तो कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जितनी जानकारी सटीक लोगों को पहले थी या फिर जानते थे, वो लगभग उतनी ही मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत सूचनाएं भी लोगों के बीच में है। एक दो मैं उदाहरण दूंगा आपको। लोगों को लगता है कि एक बार जिसे कैंसर हो गया उसका बचना मुश्किल है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर में कभी भी बायोप्सी या फिर सुई डालकर उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत तेजी से और फैलने लगता है। इसी तरह से कैंसर के कारणों के बारे में है कि लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति धूम्रपान या फिर शराब का सेवन ये सब चीजें नहीं करते हैं उन्हें कैंसर नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको। लोगों को लगता है कि जैसे अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है इसका मतलब आपको कैंसर शरीर में नहीं है। ये सारे कई सारे भ्रम हैं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और अब आते हैं कोविड और कैंसर के संबंध के बारे में। तो हुआ क्या कि चूंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन हो रहे थे, तो नॉर्मली जो लोग ये सब जांच उस टाइम में किसी और वजह से नहीं कराते, अगर उन्हें कोविड नहीं हुआ होता है तो शायद ये सब जो फेफड़े की छिपी हुई गठाने या फिर रसौली उसका भी पता उन्हें नहीं चलता। क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है जब तक से एक हद तक एक सीमा के बाहर नहीं चली जाती है तब तक व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होता है। गांठ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है और एक बार जब बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है तो तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और तब आपको पकड़ में आती है। तो कोविड के टाइम में जब सीटी स्कैन बहुत ज्यादा सारे लोगों को किए गए हो रहे थे, तब बहुत सारे लोगों को पता चला कि उनके फेफड़े में और कई जगह गांठें बनी हुई हैं, जो कि बाद में जब बायोप्सी करी जाती है तो उसमें कैंसर के लक्षण सिम्टम पाए जाते हैं। तब उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमें कोविड की वजह से कैंसर हो गया, बल्कि हुआ ऐसा कि वो पहले से बन रही थी, डायग्नोज उन्हें जल्दी हो गया क्योंकि किसी सीटी स्कैन चाहे किसी वजह से इस केस में कोविड की वजह से किया गया। तो
डॉक्टर, हमने बात की डायग्नोज की, तो कैंसर में डायग्नोज लाइफ चेंजिंग हो सकता है, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए उम्मीदें भी लाता है और डर भी लाता है। फिर भी आपने ये भी कहा कुछ देर पहले कि बायोप्सी से लोग डरते हैं, वो सोचते हैं कि वो निडल जो है वो अगर उनके उस ट्यूमर में या उस कैंसर सेल में जाएगी तो वो स्प्रेड करना शुरू कर देगा। इस मिस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से बदलना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि बायोप्सी कितनी जरूरी है?
इसका एक लंबा इतिहास रहा है और काफी हद तक जो सुई के द्वारा जो जांच करी जाती है जिसे आप निडल बायोप्सी कहते हैं या फिर निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जिसको एफएनएससी कहते हैं, आप जब तक से आप उन गठानों में से रसौली में से जब तक आप टेस्ट करके नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य कोशिकाएं हैं, नॉर्मल कोई गांठ है या फिर कैंसर की कोशिकाएं हैं और ये कैंसर की गांठ है। और ये बहुत सालों से, बहुत रादर मैं कहूंगा कि 100 साल से ऊपर से ही ये मिथ चला ही आ रहा है कि जब भी उसमें कोई आप निडल डालकर उसमें टेस्ट करते हैं तो अचानक से वो फैलना शुरू हो जाता। होता ये है कि बीमारी पहले ही बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है और जब आप उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं और एक समय के बाद और तेजी से फैलने लगती है और उसका जब टेस्ट किया जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा निडल डाला गया इस वजह से बीमारी तेजी से फैल, जबकि जब बगैर उसके कैंसर की डायग्नोसिस संभव नहीं है।
डॉक्टर, हमने बात की निडल की, बहुत लोग होते हैं जो निडल से वैक्सीन लेने से बहुत डरते हैं, कुछ में तो बचपन से ही ये डर हमने देखा है, शायद ऐसे ही कुछ लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन या भ्रम फैलाया ड्यूरिंग कोविड भी कि वैक्सीन जो है वो और 10 तरह की परेशानियां कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। कैंसर में भी बहुत सी वैक्सीन उपलब्ध हैं, कई वैक्सीन ऐसी हैं जैसे कि HPV की वैक्सीन है जो जहां तक मेरी जानकारी है कि 90% तक वो कैंसर से बचाव कर सकती है, हेपेटाइटिस बी है जो लीवर कैंसर से बचा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कई मिथ्स होने की वजह से, कई गलत जानकारियां होने की वजह से इस तरह की वैक्सीन नहीं ले रहे हैं जिनसे वो कैंसर से बच सकते हैं। उनको आप किस तरह से ये बताना चाहेंगे कि ये वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए हैं, नुकसान नहीं होगा इनसे?
ये बात बिल्कुल सही है कि खासकर कोविड के टाइम में वैक्सीन को लेकर कई सारी भ्रामक स्थिति जरूर थी और उसका कारण ये भी था कि वो एक नई वैक्सीन थी, लेकिन उसका जहां तक कैंसर कॉज करने का सवाल है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये सूचना सही नहीं है कि कोरोना वायरस जो वैक्सीन है उसकी वजह से कैंसर होता हो या फिर जो अचानक से जो कोई और बीमारी हो जाती हो, ऐसा नहीं है। कम से कम पूरे मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है और कैंसर के सिलसिले में तो बिल्कुल ही नहीं है। रही बात जो लोगों में एक हेजिटेशन होता है, एक जो आप कह लीजिए कि शक होता है कि पता नहीं इस वैक्सीन, ये वैक्सीन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, काफी हद तक इसका जो कारण है वो है सूचना का अभाव, लोगों के बीच में जो जानकारी अवेयरनेस का, जागरूकता का अभाव होना है। और जो दो आपने नाम गिनाए, खासकर जो HPV वैक्सीन जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बोलते हैं और इन्हें इसे जो है यंग लड़कियों जो या महिलाओं को दिया जाता है ताकि जो बच्चेदानी का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उससे बच सके, क्योंकि पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत ही प्रमुख कारण है, उसके कारण में से एक है। इसी तरह से जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है और लिवर के कैंसर, जिगर के कैंसर का जो एक बहुत ही प्रमुख कारण है वो हेपेटाइटिस बी का होना, और ये दोनों जो वैक्सीन है कैंसर से बचने में, इन दोनों कैंसर से बचने में बहुत सहायक हैं। और लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव होना कि इसका क्या फायदा है और क्यों, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो राष्ट्रीय टीकाकरण का भाग है, इसी तरह से आने वाले समय में सर्वाइकल वैक्सीन भी काफी हद तक लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसका, और ये दोनों वैक्सीन ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल बिना शक के जरूर हमें लेना चाहिए, जो जिनके लिए ये बनाई गई है वैक्सीन, ताकि आप लिवर के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से जो यंग लड़कियों हैं लड़की हैं और बाकी लोग जो लीवर के कैंसर से बच सकें।
डॉक्टर क्या कारण हो सकते हैं कि आपको एक तरह से 90% की अगर कोई वैक्सीन कह रही है कि 90% आप इस वैक्सीन से कैंसर से बच सकते हैं तब भी लोग उसे नहीं ले रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई भ्रम है या कोई मिथ है कि नहीं अगर आप ले लेंगे तो शायद आप प्रो हो जाएं कैंसर के लिए? या
एक तो होता है कि कैंसर का कोई भी दवाई या फिर वैक्सीन के आगे उसके आप बस कैंसर का एक शब्द लगा दें तो लोगों को एक डर बैठ जाता है, तब उसे लगता है कि इसे दूर ही रहना चाहिए, एक भागने की टेंडेंसी हो जाती है। और इसका सीधा सीधा कारण होता है क्योंकि आपके पास सही जानकारी का अभाव होना, और उसका कारण ये है कि काफी हद तक चाहे वो मीडिया में हो या फिर इंटरनेट में सही जानकारी प्रसारित नहीं हो पाती है। खासकर अगर हम बात करें जो HPV वैक्सीन है जो कि बनाई गई है यंग गर्ल्स के लिए, अगर हम स्कूलों में जो टीचर्स के माध्यम से या फिर मीडिया के द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो काफी हद तक एक मददगार होगा और लोगों को पता चलेगा कि नहीं ये हमारे एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए है और इसका कैंसर होने के से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और शुरू शुरू में कोई वैक्सीन आती है तो उसको लेकर तरह तरह के जरूर मन में शंकाएं होती है, जब एक बार लोगों के बीच में जब ये जाना शुरू हो जाता है, और यही कहानी है आपके पोलियो ड्रॉप्स की भी, जो कि बाद में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और आज भी वो चल रहा है। यही चीज है कि जब तक से लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी तब तक उस पर विश्वास करने में थोड़ी शंका होती है और कोई भी आदमी पहले आगे नहीं आना चाहता है।
डॉक्टर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कुछ विटामिन्स को लेकर सप्लीमेंट्स को लेकर। कहा जाता है कि कुछ खास तरह के विटामिन होते हैं या सप्लीमेंट होते हैं जो आपको जो एंटी कैंसर होते हैं, इनमें एक शार्क कार्टिलेज जो मैंने देखा, मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा है, ये शार्क कार्टिलेज बहुत फेमस है जो बाजार में खूब बिक रहा है, तो क्या वाकई ये है कि कुछ विटामिन्स या कुछ सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो वो एंटी कैंसर होते हैं और वो आपके कैंसर होने की संभावना को खत्म ही कर देते हैं?
देखिए, संभावनाओं को खत्म करने वाली बात तो कहना शायद जायज नहीं होगा। हमारी भारतीय खान पान में ही कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनके अब रिसर्च में सामने आ रहा है कि काफी हद तक उनमें कैंसर से प्रोटेक्ट करने की क्षमता जरूर होती है। एक होता है उसमें टर्मरिक, जिसे आप हल्दी कहते हैं, जो एक सिंपल सा हर घरों में यूज होता है। इसी तरह से कर्क्यूमिन, जिसे आप, वो भी एक एक्सट्रैक्ट है उसका। इसी तरह से कई सारे और भी हैं, जैसे भोजन में सब्जियों और फलों की मात्रा जिनमें कम्युनिटी में ज्यादा पाई जाती है, फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं खान पान में, उनमें कोलोन कैंसर से बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक बहुत हद तक एक पूरी की पूरी समुदाय और देश या फिर सभ्यता के खान पान से रिलेटेड होता है और पाया गया है कि इन लोगों में कुछ कैंसर कम होते हैं। किसी एक दवाई या विटामिन की अगर बात करें तो ये शायद कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट प्रमाण नहीं है। क्योंकि अगर आप शार्क कार्टिलेज का सेवन करते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पर खा रहे होते हैं तो आप कैंसर से बच जाएंगे या फिर कैंसर आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। कुछ हद तक ठीक है, ये एसोसिएटेड जरूर होते हैं लेकिन
गारंटी
नहीं होती। इसलिए मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि ये समझकर कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है कि शार्क कार्टिलेज खाने से कैंसर नहीं हो सकता है तो सबके सब लोग शार्क कार्टिलेज खाना शुरू कर लें। हाँ। बिल्कुल नहीं,
उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं,
उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं और कई बार उस जो आप खा रहे होते हैं ये भी चीज गारंटीड नहीं होती है कि जो कुछ आपको दिया जा रहा है वो वाकई में वो एक प्रमाणिक तौर पर वही चीज है
जिसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर कैरी एडम्स हैं, ये CEO हैं यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के, यानी कि UICC के। इन्होंने फेक न्यूज एडवाइस पर एक कोट दिया है, आप इसे अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश में देख सकते हैं या मैं हिंदी में पढ़कर आपको बता देती हूँ। नकली चिकित्सा सलाह यानी कि फेक मेडिकल एडवाइस झूठी आशा जगाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है, ये खतरनाक भी हो सकती है और सुधार में अड़चन पैदा पैदा कर सकती है और बेहतर यानी कि वेल टेस्टेड थेरेपीज की जो वैधता है यानी कि वैलिडिटी है उसके लिए लोगों में शक पैदा कर देती है। तो इसके पीछे कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जो कई बार किन्हीं कारणों से मिस इन्फॉर्मेशन को फैला देते हैं। इस पर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को भ्रामक जानकारी को फैलने से रोक सकते हैं?
जो आज की पूरी जो चिकित्सा शास्त्र की कार्य पद्धति है और वो बहुत हद तक इस पर आधारित है जिसे आप अंग्रेजी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, यानी प्रमाण आधारित चिकित्सा। जिस चीज का अगर कोई प्रमाण नहीं है तो उसे उसके फेस वैल्यू पर जस्ट कोई बोल रहा हो ऐसा करने पर उस तरीके से नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी और मोटिव से ऐसा बोल रहे हो, चाहे वो पैसे कमाने की वजह से हो या फिर किसी और कारण से बोल रहे हो, लेकिन जब तक वो एक उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है तब तक उसे जस्ट अपना लेना शायद ये खतरनाक चीज होती है। रही बात कहां से सही जानकारी हो, तो इसके कई सारे इंटरनेट पर ही सोर्सेज हैं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, हालांकि वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है लेकिन कोई व्यक्ति जिसे थोड़ी बहुत समझ हो चीजों की तो वो वहां पर जाकर उसके बारे में देख सकते हैं और उसके बारे में प्रमाण वहां पर कई सारे मिलते हैं कि जो चीज आप करने जा रहे हैं उसके पीछे कितना एविडेंस है। इसी तरह से कई सारे जो कैंसर सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अपने वेबसाइट्स हैं, उनकी जानकारियां होती हैं, और चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, इंडियन कैंसर सोसाइटी हो, चाहे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कैंसर, ये सारे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो UICC के जिसका आपने जिक्र किया, उनके अपने वेबसाइट पर जो प्रमाणित जानकारी है काफी हद तक मददगार होती है। आप वहां पर जाकर किसी भी कैंसर के बारे में, उसके बारे में कारणों के बारे में, उसके जांच के बारे में, उसके इलाज के बारे में आप और एक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि उससे ज्यादा जरूरी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उनके बार उस कई बार ये होता है कि उन्हें खुद उसकी बात की जानकारी नहीं होती है, और जो कुछ जानकारी उन्हें है उन्हें वो बिना चेक किए हुए वो दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं और उनकी बात को लोग मान भी रहे होते हैं। तो उनका दायित्व तो ज्यादा बनता है कि पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करें, इन सारे जो साइट्स हैं वहां पर पढ़ने की कोशिश करें और बेहतर जानने की कोशिश करें ताकि आप एक एविडेंस बेस्ड लोगों का ओपिनियन शेयर कर सकें।
मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि किस तरह से आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचकर रह सकते हैं, जिसका जवाब आपने दे दिया। तो अब रुख करते हैं कुछ मिथ्स की तरफ। कैंसर को लेकर बहुत से मिथ्स हैं, बहुत सी भ्रामक जानकारियां हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, जैसे बायोप्सी को लेकर, खान पान को लेकर। इन्हीं में से है कि कैंसर को डेथ सेंटेंस माना जाता है। इस बात को आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये गलत है?
उसके पीछे एक अपनी पृष्ठभूमि रही है कि जब इलाज नहीं था, और ऐसा नहीं कि कैंसर आज की बीमारी है जी। ये तो पिछले 100 साल से तो लोगों को पता ही है, शायद उससे पहले का भी उसका इतिहास रहा है। इलाज आज ज्यादा है, पहले नहीं थे, तो इसलिए लोगों को लगता था कि एक बार कैंसर जिसको हो गया तो उसके लिए एक तरह से ये डेथ सेंटेंस है, ये एक लाइलाज बीमारी है, एक बार जिसे हो गया वो ठीक नहीं हो सकता है। ये कई सारे, लेकिन पिछले 30-40 साल में जितने चिकित्सा शास्त्र में खासकर कैंसर के क्षेत्र में जितने तेजी से जो चेंजेस और जो विकास हुए हैं, नई नई दवाइयां से लेकर नए नए तरीकों का जो इजाद हुआ है, शायद आज के दिन में ये कहना ठीक नहीं होगा कि कैंसर हो जाने के बाद आपको डेथ सेंटेंस मिल गया या कुछ। ये ज्यादातर मरीज, खासकर वो मरीज जिनकी बीमारी थोड़ी जल्दी की अवस्था में पकड़ में आई है, वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं और लगभग उसी आयु तक होते हैं जो सामान्य व्यक्ति की होती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बीमारी एक अर्ली स्टेज में पकड़ी जानी चाहिए, एक लेट स्टेज में होने के बाद, एडवांस स्टेज में होने के बाद शायद इलाज उतना कारगर नहीं होता है और सफल भी नहीं होता है। तो ये सब कुछ इस बात का खेल है कि कितनी जल्दी आपकी बीमारी पकड़ी गई है और कितना जल्दी इलाज शुरू किया गया है।
एक बात यह भी है कि कैंसर संक्रमण से फैलता है, ये कितना ठीक है?
बिल्कुल गलत है। इस मेरे ख्याल से बस ये 4 शब्द काफी हैं। बिल्कुल गलत है, और इसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। मैं आपको एक शायद अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा अपनी प्रैक्टिस से ही कि एक कोई गांव से ही ओल्ड लेडी आई, बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। उनका ऑपरेशन करने के बाद लगभग ठीक हो गई, लेकिन घर जाने के बाद उनके परिवार वालों ने एक तरह से उनका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उनको घर के छोटे बच्चों के साथ उनको खिलाने की भी इजाजत नहीं, उनके खाने के बर्तन अलग, उनका रहने का कमरा अलग, उनके बाकी परिवार से मिलने जुलने के दिन। बहुत दुख होता है ये देखकर, खासकर क्योंकि खासकर ये बीमारी जिसमें पक्के तौर पर कह सकता है आदमी कि नहीं ये बिल्कुल संक्रामक बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, और एक बार ठीक हो जाने के बाद आप बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही आप अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो ये जितने मरीज हैं उन्हें एक्चुअली एक हमारी सहानुभूति की जरूरत है, उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, रादर देन कि हम उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दें। बिल्कुल गलत बात है।
हाँ, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक परिवार किस तरह से टूट सकता है अगर मिस इन्फॉर्मेशन उनके बीच में फैली हुई है। एक बात जो कि बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलती है, कि ये तो मैंने भी बहुत देखा है कि अगर आप लैपटॉप का वायर कनेक्ट करके काम कर रहे हैं तो उससे आपको कैंसर हो सकता है, माइक्रोवेव का जो फूड है उसमें आप गर्म करके अगर खा रहे हैं तो उससे आपको कैंसर हो सकता है, शुगर कैंसर को बढ़ाती है, ये क्या कहना चाहेंगे आप इन पे?
इन तीनों का कोई प्रमाण नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना तो लैपटॉप का कोई प्रमाण है कि आप, अदरवाइज ये होता ही है कि जितने लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते सबको कैंसर हो चुका होता है,
सेलफोन्स,
इतने सारे लोग माइक्रोवेव का खाना खा रहे होते हैं, तो जहां जहां माइक्रोवेव नहीं है इसका मतलब वहां पर कैंसर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है।
इससे पहले आपने एक बात की कि जितनी जल्दी हो सके कैंसर का इलाज शुरू किया जाना चाहिए, अब ये एक मिथ है या सच? लोग बहुत जल्दी, उनको हो जाती है कि जैसे उन्हें पता चला डायग्नोज हुआ कि कैंसर है, अच्छा अब जल्दी से सर्जरी होनी चाहिए, या उसे पूरा टाइम देखकर समझकर क्या वाकई जल्दबाजी की जानी चाहिए सर्जरी के लिए?
जल्दबाजी से कतई इसका मतलब नहीं होता है कि आज अगर पता चला है तो आज रात में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पहले की पूरी जांचें और तैयारी जितनी भी चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए, ताकि ये पक्का हो जाए कि बीमारी कौन सी है, किस वैरायटी का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, और उसके लिए जो उचित इलाज क्या होगा। इसके लिए जो जितने भी डॉक्टर हैं, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, कोई एक डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है, बल्कि अलग अलग स्पेशलिटी के लोग हैं, जैसे ऑपरेशन के डॉक्टर हुए, कीमोथेरेपी के डॉक्टर हुए, रेडियोथेरेपी के डॉक्टर हुए, तीनों मिलकर इलाज तय करते हैं कि पहले क्या इलाज करना है, उसके बाद कौन सा इलाज करना है, और बाकी कुछ क्या क्या इलाज करना है। तो ये बात तो सही है कि बिना कारण समय गंवाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं हुआ कि रातों रात ये चीज करना ही करना है, और जब तक से बाकी चीजें पूरी नहीं हो जाती है, तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हड़बड़ी में कभी भी ऐसा हम लोग नहीं करते।
डॉक्टर, एक आखिरी सवाल लेते हैं जो वहां पर बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्या एक बार कैंसर हुआ, आपने इलाज कराया और अभी आपको कैंसर नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा कैंसर आएगा ही आएगा, ये इस बात को आप लोगों तक किस तरह पहुंचाना चाहेंगे, इसमें क्या सही है और क्या गलत?
अगर आप इस सवाल को इस तरह से रखते कि कैंसर दोबारा आ सकता है तो शायद ज्यादा उचित होता, ना कि ये कहना कि आएगा ही आएगा।
लोगों में ये मिथ है कि अगर आपने इलाज कराया है तो भी दोबारा होगा।
यही चीज मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा कि जी हाँ, ऐसा जरूर है कि जितने भी कैंसर के इलाज के बाद सारे मरीजों को एक रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें वापिस आने के चांसेस जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि बीमारी किस स्टेज की थी। अर्ली स्टेज की बीमारी, पहले स्टेज की बीमारी, आपने इलाज पूरा कर दिया, चांसेस बहुत कम होते हैं कि बीमारी दोबारा आने के, लेकिन इसे 0% बिल्कुल हम नहीं कह सकते। इसलिए सारे मरीजों को जो उन्हें रेगुलर चेकअप, जो कि इलाज पूरा होने के बाद शुरू होता है और बीच बीच में इंटरवल पे हम उन्हें बुलाते रहते हैं, चाहे वो 3 महीना पर हो, 6 महीना पर हो, 1 साल पर, जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है बीमारी वापस आने के चांसेस और कम होते जाते हैं, लेकिन पहले 2 साल उन्हें एक डेफिनेट फॉलोअप में जरूर रहना होता है। तो ये नहीं कह सकते कि आएगी ही आएगी, लेकिन हाँ आने के चांसेज होते हैं, और उस पर जब भी बीमारी अगर वाकई वापिस आती है तो उसे भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, इसलिए उसे ठीक किया जा सके। तो उसका जो लक्ष्य यही होता है रेगुलर जो फॉलोअप का।
डॉक्टर, हमने बात की लोगों पर कैंसर के असर की, परिवार पर होने वाले असर की। एक असर कैंसर से और देखा जाता है जो आर्थिक होता है। लोगों का मानना है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, उनकी जेब खाली हो जाएगी, कुछ लोगों का कहना होता है कि घर बिक जाएंगे। क्या वाकई ये इलाज बहुत खर्चीला होता है?
देखिए, इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। हाँ, उस सिलसिले में जब बीमारी आपकी बहुत लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में पकड़ी गई हो, तो होता क्या है कि उसमें कई सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं बीमारी से लड़ने उसके इलाज के लिए, और जितने ज्यादा तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे उनका खर्च जुटते जाता है। और ये बात सही है कि जो लेट स्टेज की बीमारी और जिसमें दवाइयां ज्यादा महंगी यूज की जाती हैं, उसमें खर्च ज्यादा होता है। ऑपरेशन का खर्च हुआ, कीमोथेरेपी का खर्च हुआ, रेडियोथेरेपी का खर्च हुआ, और कुछ एडवांस दवाइयां हैं जरूरत पड़ी तो उनका खर्च हुआ। लेकिन उसका जो सकारात्मक पहलू यह है कि जितनी अर्ली स्टेज की बीमारी पकड़ी जाएगी उसमें सिर्फ एक तरीके से ही काम हो जाता है और काफी कम समय में, कम खर्च में इलाज और सफल तरीके से पूरा हो जाता है। तो मिला जुला कर बात यही है कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी उतने ही कम खर्च में उसका इलाज हो जाएगा।
डॉक्टर, हमने बात की परिवार की, खर्चों की, तो एक खर्च को लेकर अक्सर परिवार बोझ महसूस करता है या दबाव में आ जाते हैं, कई तरह से उनको कई रास्ते अपनाने पड़ते हैं इलाज पाने के लिए। ऐसे में लोगों में ये भी एक डर होता है कि अगर परिवार में किसी एक को हो गया तो बाकियों को भी कैंसर होने की उतनी संभावना है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि ये वो किस तरह से इसे लें?
ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये भी एक कैंसर के बारे में काफी बड़ा मिथ है, और लोगों को लगता है कि उनके माता पिता या फिर घर में ताई जी, चाची जी, चाचा जी को अगर कोई कैंसर हो गया तो हो ना हो किसी दिन उन्हें भी हो जाएगा। ये शायद कहना सही नहीं है। ये बात जरूर सही है कि कुछ कुछ कैंसर जरूर होते हैं जिसमें अगर आपके माता पिता या फिर परिवार में इमीडिएट जो रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर जो है उनमें अगर कैंसर हुआ है तो आपके कैंसर होने के चांसेस सामान्य व्यक्ति से कुछ हद तक ज्यादा जरूर होते हैं। लेकिन ये कहना कि आपको भी हो ही जाएगा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और घर पर ये कोई वंशानुगत बीमारी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही हो, ऐसा नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील, जिन्होंने तकरीबन सभी भ्रमों को आज यहाँ पर तोड़ दिया है और आपको सही और सटीक जानकारी दी है।